नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सरकार ने एयर इंडिया से अलग हुई दो सहायक कंपनियों AIASL और AIESL के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने AIASL और AIESL में निवेशकों की दिलचस्पी का पता लगाने के लिए बैठकें और रोड शो शुरू किए हैं। हम जल्द ही इच्छुक बोलीदाताओं से EOI आमंत्रित करेंगे। सरकार ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया को पिछले साल अक्टूबर में टाटा समूह को 18,000 करोड़ रुपए में बेचा था। इस तरह जनवरी में एयर इंडिया पूरी तरह टाटा को सौंप दी गई। हालांकि एयर इंडिया की चार सहायक कंपनियां एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड और होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस सौदे का हिस्सा नहीं थी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के धार जिले में 325 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना चालू की है। कंपनी के परिचालन वाले संयंत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़कर 6,100 मेगावाट हो गई है। बयान के अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी की अनुषंगी अडानी विंड एनर्जी MP1 प्राइवेट लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के धार में 324.4 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया है। कंपनी ने इस संयंत्र से उत्पादित बिजली के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल का खरीद समझौता किया है। ये समझौता 2.83 रुपए प्रति यूनिट की दर पर किया गया है। इस संयंत्र का प्रबंधन अडानी समूह के एनर्जी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर प्लेटफॉर्म करेगा। ये मंच प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करता है। कंपनी फिलहाल 20,400 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसमें परिचालन में आ चुकी और निर्माणाधीन परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार जल्द ही अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले विपणन वर्ष के लिए चीनी के निर्यात कोटा की घोषणा करेगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने हालांकि विपणन वर्ष 2022-23 में निर्यात के लिए चीनी की मात्रा के बारे में नहीं बताया। पांडे ने रोलर फ्लोर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 82वीं आम सभा के मौके पर कहा, हम जल्द ही अगले सत्र के लिए चीनी निर्यात नीति की घोषणा करेंगे। सरकार ने मई में 100 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी। बाद में इसमें 12 लाख टन की बढ़ोतरी की गई। इससे विपणन वर्ष 2021-22 के लिए कुल निर्यात कोटा 112 लाख टन हो गया। कोरोना काल में लोगों ने यात्राएं करनी बंद कर दी थी। अब सरकार के प्रयासों से हुए वैक्सीनेशन के बाद कोरोना के मामलों में कमी आई है। अब इससे मरने वालों की संख्या में भी काफ़ी मात्रा में गिरावट आई है। ऐसे में अब लोग हवाई यात्राओं पर विदेशों का सफ़र शुरू कर रहे हैं। बिहार में IRCTC ने लोगों को विदेशी टूर पर भेजने के लिए एक नया ऑफर शुरू किया है। बिहार के लोगों को कम खर्च में विदेशी यात्राओं का ऑफर दिया है। बिहार के लोगों को सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में घूमने के लिए अक्टूबर महीने में IRCTC बिहार की राजधानी पटना से उड़ान भरेगी। वहीं बिहार से थाईलैंड की यात्रा के लिए IRCTC नवंबर में हवाई यात्रा शुरू करवाएगा। वहीं सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा अगले महीने की 13 तारीख से शुरू होगी। IRCTC के पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के DGM जफर आजम खान ने समस्तीपुर में रविवार को बताया कि ये यात्राएं 13 अक्टूबर से शुरू होंगी। ये यात्रा 8 दिन और 7 रातों के लिए होंगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल कर वेब इंटेलिजेंस के जरिए सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर निगरानी बढ़ाने की योजना बना रहा है। सेबी ने सोमवार को जारी सार्वजनिक सूचना में वेब इंटेलिजेंस को लागू और शुरू करने और उसके रखरखाव के लिए समाधान प्रदाताओं से रुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। नियामक ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इसके कारण वेब पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अव्यवस्थित या बिखरे डेटा की भारी वृद्धि हुई है। अव्यवस्थित डेटा में वीडियो और ऑडियो फाइल, सोशल मीडिया पोस्ट आदि आते हैं। सेबी ने कहा कि इस अव्यवस्थित डेटा में विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों, समूहों और विभिन्न प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन से संबंधित विषयों के बारे में गहन जांच से जुड़ी जानकारी प्रदान करने की क्षमता है। अंबुजा सीमेंट और ACC का अधिग्रहण 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर में पूरा करने के कुछ दिनों बाद गौतम अडानी ने कहा कि उनके समूह ने सीमेंट विनिर्माण क्षमता को दोगुना करने और देश में सर्वाधिक लाभप्रद विनिर्माता बनने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि जोरदार आर्थिक वृद्धि और सरकार के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के कारण भारत में सीमेंट की मांग में कई गुना वृद्धि होगी। इसके चलते मार्जिन भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगा। अडानी समूह के संस्थापक और चेयरमैन ने 17 सितंबर को अधिग्रहण के पूरा होने पर एक कार्यक्रम में कहा कि उनका समूह एक बार में ही देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट विनिर्माता बन गया है। अडानी समूह ने पिछले सप्ताह इन दोनों कंपनियों में होलसम की हिस्सेदारी खरीदने का काम पूरा किया। ओडिशा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि को मंजूरी दे दी है। ये वृद्धि 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 4 लाख कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। विज्ञप्ति के अनुसार जनवरी से अगस्त तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान अलग से किया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।